Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific query. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050, and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद नमस्कार. घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं. जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं. ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं. आप हमें इन फोन लाइंस पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता, इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें. आज चर्चा के लिए और आप सबके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
वार्म वेलकम शरद.
धन्यवाद स्पर्श. थैंक यू सो मच राजेश, और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख.
सेंसेक्स एड्स 1536 पॉइंट्स ड्यूरिंग द वीक. निफ्टी राइजेस 1.7%. Wall Street races to a 31-month high. All three U.S. indices post weekly gains. And in the week, Brent and WTI were up by 6%.
इस सप्ताह सेंसेक्स में 1536 अंक की वृद्धि और निफ्टी 1.7% बढ़ा. अमेरिकी बाजार ने 31 महीने के उच्चतम स्तर को छुआ. तीनों ही सूचकांकों में दर्ज की गई साप्ताहिक बढ़त. और इस सप्ताह ब्रेंट और WTI क्रूड में लगभग 6% की बढ़ोतरी देखी गई. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर. कल समाप्त हुए सप्ताह में बुल्स ने शानदार वापसी की. सेंसेक्स और निफ्टी में दो सप्ताह से चल रहा गिरावट का सिलसिला थमा. अडानी रिश्वत मामला, भू राजनीतिक तनाव और FII की निरंतर बिकवाली को नजरअंदाज करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 2% की बढ़त देखने को मिली. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1536 अंक मजबूत रहा. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 1.7% की वृद्धि दर्ज की गई. इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं. विवेक जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछिए अपना.
हाँ नमस्कार सर. मार्केट मंडल टीम को मेरी तरफ से नमस्कार और शरद सर को भी नमस्कार.
नमस्कार विवेक.
हाँ सर, मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू इसमें जुड़ा हुआ हूँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं, मगर सर मुझे शेयर मार्केट का अनुभव नहीं है
जी.
और मैं अगर इसमें जुड़ना चाहता हूँ तो मुझे इसमें कैसे से जुड़ सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से तो सर 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. उसमें मैंने अभी आपके मार्केट मंत्रा सुन के ही मैंने उसमें कई सारे फंड्स भी सिलेक्शन किया है और मुझे सही रिटर्न मिल रहा है
जी.
मगर अगर मैं शेयर मार्केट से जुड़ना चाहूँ तो कैसे जुड़ सकता हूँ सर?
देखिए विवेक, पहली तो आप म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है. और आप कह रहे हैं अच्छा रिटर्न्स आ रहा है, तो आप उसको शायद आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं, जो कि आप सीधा जुड़ना चाहते हैं. देखिए शेयर मार्केट से जुड़ने का तरीका यह है कि उसके लिए पहले पूरी स्टडी चाहिए, पूरी रिसर्च चाहिए. तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे गूगल करेंगे, बहुत सारे आपको इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी. लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, फिर इसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी एक तरह से पूरी डिक्शनरी है
जी.
तो पहले आप उस डिक्शनरी को समझेंगे तो आपको जो लोग शेयर मार्केट की बातें करते हैं वो एक तरह से व्याकरण है। तो जो लोग शेयर मार्केट की बातें करते हैं तो वो क्या भाषा बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। आप मार्केट मंत्रा बहुत टाइम से सुनते हैं, मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। तो बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हैं, तो शुरू में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले रिसर्च करें, करीब एक महीने के आसपास अगर आप लगातार इसको स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आप कुछ कुछ तैयार हो जाएंगे, और बहुत थोड़ा सा पैसा। और एक मैं आपको और सलाह दूंगा राजेश और स्पर्श की इजाजत से, और ये सभी श्रोताओं के लिए है, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से, डेरिवेटिव से कर देते हैं, वो सीधा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा भी होता है कई बार एक घंटे में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, और एक और कुछ मिनट में साफ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक निवेशक बनकर आए, आप एक स्पेकुलेटर या ट्रेडर बन के पहले ना आए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा सा पैसा आप 5-10-20 हज़ार से आप कोई स्टॉक खरीदें, उसको ऑब्जर्व करें, जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं उस पर आप रिसर्च करें, उसकी बैलेंस शीट परफॉर्मेंस कैसी थी, कौन कैसा उसका पिछला परफॉर्मेंस रहा है, आगे कैसा रहा है। तो एक बहुत लंबा ये विषय है, तो पूरी स्टडी आप करें, और आपको स्टडी करते टाइम जो भी शक्को शुबा हो, आपको कुछ जानकारी लेनी हो, तो मार्केट मंत्रा की टीम हमेशा आपके लिए हाजिर है, आप उसमें पूछ सकते हैं। मंडे और सैटरडे को लाइंस खुली रहती हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो स्टडी बहुत जरूरी, देखिए अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा
जी। और दिल्ली से हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछे अपना।
जी नमस्कार जी, राजेश जी एंड शरद जी नमस्कार।
नमस्कार जी।
नमस्कार
जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मलेशिया है, तो कैसे वो पैसा मतलब इन्वेस्ट कर सकती है?
आपकी बिटिया मलेशिया रहती हैं, तो लाजमी बात है, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है राजेश और स्पर्श के, जो लोग विदेशों में रहते हैं और भारतीय मूल के हैं
जी,
उनको निवेश के लिए भारत ही ठीक लगता है कि यहाँ पर पैसा लगाना सेफ है। बड़ी अच्छी, तो मैं सलाह दूंगा चंद्रशेखर जी, क्योंकि वो बाहर रहती हैं, तो कुछ मैं 3-4 आपको एवेन्यूज बता देता हूँ। आप गोल्ड के ETFs देख सकते हैं लंबे समय के लिए, कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा लगा सकती हैं, और मार्केट मंत्रा संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स पे करता है, तो आपको म्यूचुअल फंड के नाम भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि वो NRI हैं, तो मैं PPF तो उनको रेकमेंड नहीं करूंगा, कुछ बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स में भी रख सकती हैं। तो ये 2-3 एवेन्यूज हैं, और अगर मान लीजिए उनको कल को कोई प्रॉपर्टी वापस आएंगी, जब वो उनको प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो क्योंकि वो बाहर हैं तो लंबी अवधि के लिए NRIs जो होते हैं वो प्रॉपर्टी को भी प्रेफर करते हैं, तो आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई रियल एस्टेट में भी, आप कोई रेजिडेंशियल हाउस उनके लिए जिसको आप किराए पर चढ़ा सकें वगैरह वगैरह, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप चंद्रशेखर जी, क्या ये सब डिपेंड करता है कि उनकी उम्र कितनी है, कितना पैसा वो निवेश करना चाहती हैं, कितने समय के लिए करना चाहती हैं, कितना उनका मंथली या एनुअल फ्लो है, तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है। हम लोग इन्वेस्टर का एक प्रोफाइल बनाते हैं सलाह देने से पहले, पर क्योंकि आपको मुझे सीधा जवाब देना है तो मुझे वो सारे पैमाने जिक्र करने पड़ रहे हैं, तो ये सब आप इसको ध्यान में रखें। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड ETFs में, और रियल एस्टेट को आप कंसिडर कर सकते हैं, और बैंक तो आपके लिए हमेशा हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तो आपके पास NRO NRE उनका अकाउंट होगा ही होगा, तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं।
जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु इज NR प्रसाद, अ वार्म वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हाय, गुड इवनिंग राजेश जी, गुड इवनिंग स्पर्श,
गुड इवनिंग
जी, गुड इवनिंग टू यू,
गुड इवनिंग मिस्टर प्रसाद।
रेगुलरली आई एम ट्रेडिंग ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
ओके,
नो व्हाट आई वांट इज आई वांट द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर ऑल लिस्टेड अंडर S&P 500। सी आई वांट टू ट्रेड मे बी ओनली द टॉप 4-5 कंपनी, दैट्स ऑल। आई ट्राइड इवन गेटिंग इट थ्रू द नेट बट आई कुड नॉट गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, and there is a sub question into this.
Yeah,
see, when you say SP 500, like SP 500, that shows the value.
Yeah,
is this value comprising of 7-8 stock exchanges all over US, or it is only pertaining to only Nasdaq or New York stock exchange? Thank you, these are my two questions.
No, Mr. Prasad, there are three principal indices, you know, there is S&P, there is Nasdaq, and there is the Dow, which we normally track, you know. So S&P, first of all, if you go to the New York Stock Exchange website, you will find the name of the company. Unfortunately, you know, here in this program, we do not name companies. Otherwise, I could have named, companies, although that rule applies to Indian companies, but I presume that we should not be naming the American companies also for that. But that list is very widely available on a number of websites. I'm surprised as to you didn't run into them. As far as the value is concerned, it's like an index, the way BSE and NSE, like Nifty has got 50 stocks, you know, as a weightage. BSE has got 30 stocks as a weightage. Likewise, S&P is 500. And Nasdaq has got certain stocks. So the indices always comprise of certain number of stocks. So the value is determined accordingly. I am not very, very clear on what exactly you meant by cross indice valuation. That what do you meant by Nasdaq is independent, mostly tech based companies. Dow is traditional. S&P 500 has got a Standard & Poor's, they've got a standard list. So there is no interrelation between the indices. All indices go independently and they have weightage to different companies. Unfortunately, the companies are literally in my mouth, but the protocol requires that it should not be spoken about. Yes. Yeah.
और दिल्ली से हमारे साथ जे एस सलोजा जी जुड़ चुके हैं. सलोजा जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे.
गुड इवनिंग टू शरद जी एंड टीम ऑफ.
गुड इवनिंग सलोजा सर.
माय क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ टू सेक्शंस बेसिकली, ए एंड बी. फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज दैट इन लास्ट ईयर बजट ऑन 23rd June सम ऑल्टरेशन इन LTCG एंड STCG वाज डन.
या
सो माय क्वेश्चन इज, इफ somebody has bought shares say 10 or 12 years back.
Yeah.
And he sells it now. So in that case, will the LTCG be 10% or 12.5%? One. And part B is that if somebody has sold after 31st March, in the period between 31st March and 23rd June, so in that case, the STCG will be 15% or 20%. If I could explain you further, the thing is that if somebody has bought for the past, say, 10, 15 years, and he's selling it now, so, because since he has bought before 23rd June, so in my opinion, it should be 10% only. Your expert opinion. Thank you.
So, Mr. Saluja, the amendment made in the budget, which came in July, that clearly says that any sale of stocks after that date, the new rates would be applicable, which is 12.5%. So that is very clear on that. And if you are, so any stocks bought hereafter, so basically they've given you an option. You can either choose this or choose that. But any stocks which are bought after the July budget, then only the new regulations would apply. So I repeat that there's a grandfathering provision that if you bought the stock before, you can probably compare the two methods, which method is workable for you, the 10% or 12.5%. But if you bought after that, then for any stocks bought after July, hence on, although they'll all be short term right now, the new rules would apply on that. Yeah.
Shankar from Bhopal joins us. A warm welcome, Shankar.
Good evening, Market Matra team.
Good evening.
Good evening.
So how do you see, how the FII will evaluate the current scenario in terms of SEBI, because there are a lot of questions on SEBI. How the FII will evaluate SEBI's action in past and how it should act in future, so that numero uno and all those companies that have affected the scenario in market investment scenario in India, because it is actually affecting a lot of all the retail investors and our market in general. Do you see a good thing happening in the near future, so that things are cleared out, clouds are cleared? Thank you.
Shankar, SEBI, the present scenario in the market, the funds being sold in FIIs for various reasons. One of the reasons is that the dollar index has been going up, and the geopolitical situation is very, very fluid. So whenever there is disturbance around the world, the investors tend to pull the money back into their countries. So that is a normal phenomenon. We are seeing aggravation on the Russia-Ukraine front in West Asia. So it's normal for investors to panic and take away the money to back to their home. कहीं आपके घर पे आसपास भी कोई शांति हो तो आपका कहीं सामान किसी के पास रखा हो फटाफट, you like to bring it back to your home. So I think the exodus of funds by FIIs and FPIs, I need to be very clear on that, has got nothing to do with SEBI or SEBI's functioning. SEBI is one of the better regulators in the country, and I think it is regulating the market excellently. There's no problem with SEBI. The allegations, counter allegations, we do not discuss controversial issues on this. But SEBI, as far as SEBI as a regulator is concerned, the reason why FIIs are pulling money out of the market is not because of SEBI. Some of the Chinese valuations had become attractive, so they wanted to test out alternate markets. But, recently, a very important point, which we could have discussed later also, but it's worth mentioning, CLSA, I'll mention four, rating agencies, CLSA, HSBC, Citibank, and Goldman Sachs. The rally which you saw, the massive rally which you saw yesterday, over 500 points in Nifty, is because they broke out the news in the morning that after the 10% fall, the Indian market valuations, which were considered to be overvalued, are again looking attractive. Okay. So suddenly there was a rush, and everybody rushed that if the market's now down to 23,000, between 23,000 and 23,500, they're looking attractive. So they came back. So I think FIIs they book profits for various reasons. They're also booking profits. If you made a profit, you book the profit.
They're so like businesses.
It's their
profits,
business. So yeah, they keep coming and going. I don't think it has got anything to do with SEBI. I've never heard that because of SEBI, the FIIs are pulling the funds. So Shankar, you just need to, correct that information within yourself.
Moving on, Wall Street closed higher on Friday with all three major indices posting weekly gains as investors took comfort from data pointing to robust economic activity in the world's biggest economy. A measure of business activity raced to a 31-month high in November, boosted by hopes for lower interest rates and more business-friendly policies from President-elect Donald Trump's administration next year. The Dow Jones Industrial Average rose 0.9%, the S&P 500 gained 0.3%, and the Nasdaq Composite gained 0.16%.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि स्कॉट बेसेंट उनकी सरकार में वित्त मंत्री होंगे। श्री बेसेंट निवेश कंपनी की स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के संस्थापक हैं और पिछले एक वर्ष में वे श्री ट्रंप के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में उभरे हैं। दिल्ली से हमारे साथ आर एस दहिया जुड़ रहे हैं। दहिया जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए अपना।
सर नमस्कार।
नमस्कार जी।
सर माई क्वेश्चन आर टू स्मॉल क्वेश्चन। फर्स्ट इज, has the market bottomed out in the present situation? Second question is, the negative effect of one of the company's allegations against them that they've given some bribe, is it a false news? And similar news came couple of months back and the market, those shares of this particular group companies had fallen, then they revived, again similar situation. Is it just to cause a damage to some investors or it is some, there is some truth?
Okay. Mr. Dahiya, I got your question. Your first question was whether the market has bottomed out. In stock markets, when we sit together, we say it's never a good idea to predict the market. So, but market, despite the recovery that we saw yesterday, the market is still, as per my technical analysis and as per the charts, is still in a bearish phase. So a lot is happening, Mr. Dahiya, on the geopolitical front between Russia and Ukraine. I'm sure you do keep track of news as to what's happening. So I think we're still in a wait and watch mode, whether market will go down further from here. If this momentum which built on Friday, if this continues, maybe we see a recovery. But principally, we seem to be in a bearish phase if we look at the data collected, the daily moving averages and all the technical parameters which we keep in mind. Your second question was relating to, we usually avoid discussing controversial issues. See, any allegations made on any company is all subject to being proved in the court. So unless any charges are substantiated, we have no right to comment on it. We can only speculate about what has been said in another country. But principally, I feel what has been decided in another country may not be applicable to our country. Yes. Neither do I refute the charges, nor do I support the company. So I think this is a controversial issue. We'll have to wait and see as to how the matter pans out in the times to come. And I think you will automatically see what happens.
और दिल्ली से हमारे साथ विजय जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछें।
गुड इवनिंग एंटायर मार्केट मंत्र टीम, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ कोहली सर।
माय प्लेजर सर।
सर, आई वांटेड टू आस्क अबाउट स्पेशली डिफेंस सेक्टर एंड द शिप बिल्डिंग सेक्टर्स, व्हाट मीन वी कैन एक्सपेक्ट इन द नियर फ्यूचर, लाइक इन वन ईयर और सिक्स मंथ।
Okay.
I wanted to know, sir. Thank you.
Vijay ji, defense sector is going gaga. I must tell you, with the situation around the world and the progress which India is making, in developing new kind of missiles and new kind of aircraft, the new kind of guns, tanks. India is one time, even the nuts and bolts were being exported. But today we have exports of 21,000 crore plus. We're getting orders from across the world. So I think defense sector has got a very, very bright future. You were asking about another one, building sector. I think maybe shipbuilding that he was asking. Yeah. Even shipbuilding seems to be very bright. But then keep, Vijay ji, a long-term perspective in mind. Defense, you can see things happening in short term also. But shipbuilding, because India's total exports now are touching about $800 billion. And I think India is coming up as a huge manufacturing hub. We are giving China competition. China plus one policy seemed to be working. A lot of investment coming up. A lot of manufacturing focus from the government also. So a lot of ship movements, a lot of merchandise movement around the world is going to be witnessed. So I think both your, I must appreciate your choice of both the sector. Both sectors, very good. Shipping, shipbuilding, little longer term. Defense in medium to long term. Yes.
From Bhilai, we are joined in by Ravi Narayan. A warm welcome.
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
जी को भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार रवि
सर। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ
जी,
और म्यूचुअल फंड में करीब 5,000 रुपए एवरी मंथ जाता है
जी।
एक अग्रणी बैंक के हाइब्रिड और फोकस्ड और मल्टी कैप में
जी,
इक्विटी हाइब्रिड और फोकस्ड इक्विटी और मल्टी कैप में जाता है
जी।
तो मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है
जी,
फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब फ्यूचर के हिसाब से कि मतलब मैं आगे मेरे और मेरे डिपेंडेंट्स के लिए कुछ एक फंड बने, यही इरादा है
जी।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे सारा का सारा फोकस भी इक्विटी में कर लेना चाहिए कि अभी जो है वो ठीक है, या कुछ मुझे चेंज करना चाहिए क्या?
आपके सवाल से दो बातें निकल के आते हैं रवि जी। एक तो क्या सारा के सारा म्यूचुअल फंड में ही रखना चाहिए, या और म्यूचुअल फंड की वैरायटी चेंज कर लेनी चाहिए, थोड़े से एक दो और फंड्स में रखना चाहिए? दूसरा ये कि क्या म्यूचुअल फंड और कोई निवेश का ऑल्टरनेट भी रखना चाहिए म्यूचुअल फंड के अलावा? तो मैं दूसरे पे फोकस करूंगा। मुझे लगता है रवि जी, आप क्योंकि आपका कोई ऐसा शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं और आगे अपने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक फंड खड़ा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा विचार है। एक तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कल जरूर फोन करें, उसमें म्यूचुअल फंड के नाम भी आपको बताए जाएंगे कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, और कोई म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्ट करेंगे। प्रिंसिपली मैं आपको बताता हूं कि हम लोग एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जो मैं अक्सर बोलता रहता हूं, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो उसमें सारा पैसा एक ही एवेन्यू में नहीं रखना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आपको अवश्य पता होंगी, और गोल्ड ETFs को आप ट्राई करिए, क्योंकि गोल्ड मुझे आने वाले समय में उसका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। मैं बहुत समय से बोलता रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं जब से गोल्ड बोल रहा था उस समय गोल्ड $2,200-2,300 होता था, आज वो $2,700 पर आउंस पे चल रहा है। तो जिन लोगों ने हमारी सलाह मान के राजेश और स्पर्श निवेश किया होगा, आज वो बहुत बड़े मुनाफे में होंगे, और हमें ये बहुत उत्सुक हूं मैं जानने के लिए कि कितना कितना मुनाफा किसको हुआ। तो गोल्ड ETFs को आप रखिए, और इक्विटी में आप बहुत सेलेक्टिव बेसिस पे करिए, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करिए। अभी आपसे पहले एक श्रोता ने पूछा था कि कैसे हम इक्विटी में करें, थोड़ा सा रिसर्च करिए, स्टडी करिए, गूगल करिए, उस कंपनी के बारे में जानिए, फिर आप इक्विटी। तो इसको थोड़ा सा रवि जी इसको फैला दीजिए।
आइडियल मिक्स शुड बी डेट इक्विटी एंड गोल्ड।
आइडियल मिक्स शुड बी डेट इक्विटी गोल्ड लिटिल बिट ऑफ बैंक फिक्स डिपॉजिट ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एंड अ PPF ऑल्सो। इफ यू आस्क मी आइडियल मिक्स, देन आई वुड लाइक टू स्प्रेड माई विंग्स इन टू ऑल द एवेन्यूज, बिकॉज आई वॉन्ट वॉट बिकॉज सी रवि जी इज अ सीनियर सिटीजन, इट्स हार्ड अर्न मनी, आई मीन विदाउट अ डाउट। सो वॉट वी वुड रादर प्रेफर, वी वुड ट्राई एंड गेट एन एलिगेशन फ्रॉम समबडी दैट हमें रिटर्न 12% की जगह 10% आया। पर अगर कोई हमको श्रोता ये कह दे कि मेरा तो नुकसान हो गया आपको बताने से, वो मेरे ख्याल हमको अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड रादर टेक एन एलिगेशन के थोड़ा कम रिटर्न आया, सो देयरफॉर स्प्रेड इट अक्रॉस एज फॉर, उससे आप रिस्क को स्प्रेड कर देते हैं। मुझे लगता है रिस्क स्प्रेड करना, खासकर एक सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी गाड़ी कमाई खून पसीने की है, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। सोचिए अगर नुकसान हो जाए तो उनको कितना बुरा लगेगा, आप तो वो पता नहीं उनको पेंशन आती है, कमाते हैं नहीं कमाते हैं, तो उनकी तो जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी। तो इसलिए हम प्रोफाइलिंग करते हैं कि कितनी उम्र है, कितने समय के लिए करना है, आप क्या करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, शादी है, ब्याह है, आप पढ़ाई लिखाई के लिए लेना चाहते हैं, बाहर जाने के लिए लेना चाहते हैं, किस घूमने के लिए लेना चाहते हैं, हम लोग पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं तब जवाब देते हैं। मैंने क्योंकि उन्होंने सीनियर सिटीजन बताया, इसलिए मैंने राजेश आपको ये स्पेसिफिकली बता दिया।
फरीदाबाद से हमारे साथ के सन्हा जुड़ चुके हैं। सन्हा जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछिए।
हाँ जी, हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम और कोहली साहब को नमस्कार।
नमस्कार
सन्हा, नमस्कार।
कोहली साहब, आप एक पिछले प्रोग्राम में बता रहे थे
जी
कि जब मार्केट बियरिश हो
जी
तो बाय इन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए।
चलिए आप पूरा कर
लीजिए, ठीक है? और या फिर अगर मार्केट बियरिश हो
जी
तो कौन सा स्ट्रेटेजी करना चाहिए ताकि मिनिमम, मतलब मिनिमम रेट पे परचेज किया सके स्टॉक?
सिन्हा साहब, मैंने मुझे नहीं याद आ रहा मैंने कब कहा, क्योंकि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज ये एक मार्केट का मूवमेंट का पैटर्न होता है
जी।
तो जरूरी नहीं है कि हर बेरिश मार्केट आप बाय ऑन डिप्स करें। पहले मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा राजेश और स्पर्श, ये सभी के लिए है ये कि ये सेल ऑन राइज, बल्कि बेरिश मार्केट तो सेल ऑन राइज होती है, बाय ऑन डिप्स तो जो बुलिश मार्केट होती है वो होती है। अब क्योंकि मार्केट बेरिश है, मैं आपको सलाह दूंगा सिन्हा साहब, अगर मार्केट बेरिश है लगातार नीचे जा रही है तो कुछ दिन मार्केट से दूर रहने में भी कोई बुराई नहीं है। बैठ के खड़े होकर दूर से तमाशा देखिए ना, जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर को चढ़ने लगे तब आप करिए। तो आप ध्यान रख, फिर से मैं बताता हूं सिन्हा साहब, शायद कुछ कंफ्यूजन था, सेल ऑन राइज बेरिश मार्केट में होता है और बाय ऑन डिप्स बुलिश मार्केट में होता है। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, पर ये भी एक पैटर्न है, अगर लगातार गिर रही है तो मार्केट से दूर रहना भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी माना जाता है, हम ऐसे मानते हैं। लोग हंसते हैं कई बार, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, पर कई बार दूर खड़े होकर तमाशा देखना भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। जी,
moving on, oil prices climbed about 1%, settling at a two-week high as the intensifying war in Ukraine this week boosted the market's geopolitical risk premium. Both crude benchmarks were up about 6% for the week, their highest settlements since November 7 as Moscow stepped up its Ukraine offensive after Britain and the US allowed Kiev to strike deeper into Russia with their missiles. Brent future rose 1.3% to settle at $75.17 per barrel. U.S. West Texas Intermediate crude rose 1.6% to settle at $71.24. The Japanese government has approved a comprehensive economic package worth about $250 billion as it seeks to shore up consumer spending amid rising prices. The package, adopted at an extraordinary cabinet meeting yesterday, includes subsidies to mitigate the negative impact of higher energy prices and cash handouts to low-income households as disposable incomes are whittled away by price hikes. Prime Minister Shigeru Ishiba told that the wage growth is necessary for expansion in the broader economy. Also, Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, has the potential to boost 99.6% of Indian exports with market access to European Free Trade Association countries. TEPA between India and the European Free Trade Association countries signed in March 2024 is set to drive investments worth $100 billion.
Jaipur se hamare saath Jitendra jud chuke hain. Jitendra ji, swagat hai aapka. Please, sawal puchhe apna.
Haan, dhanyawad sir. Abhi main suni raha tha ki दूर से रह के तमाशा देखने के लिए, तो आधा तो जवाब हमको मिल ही गया कोहली जी आपसे। तो दूसरा ये था कि अभी जो र्यूमर आई है, तो पहले भी एक साल पहले भी ऐसे ही आया था, तो उस समय हम मिस कर गए थे लेना, तो अभी फिर र्यूमर आया है, तो सर क्या आपका क्या इसमें टिप्पणी है, कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए?
जितेंद्र जी, जहां पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और आप मार्केट की, हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं, पीई रेशियो देखते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है और आपको लग रहा है कि कंपनी में वाकई बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ उसको उसकी ऐसी कोई खबर आई है जिसमें उसकी बदनामी हो रही है वगैरह वगैरह, पर जब तक, अभी आपसे पहले भी पूछ रहे थे, जब तक किसी कंपनी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो जब तक वो सब्सटैंशिएट नहीं किया जाता, खाली इल्जाम लगाना एक चार्जशीट फाइल कर, जब तक वो सब्सटैंशिएट हो जाए यानी कि किसी भी कोर्ट में जब तक प्रूव ना हो जाए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय कोर्ट में अगर प्रूव हो तो हम लोग उस पर ज्यादा यकीन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी न्याय प्रणाली पर ज्यादा यकीन है। तो अब जितेंद्र जी, आपको वैल्यूएशन देखते रहिए, उसको बड़ी आप पैनी नजर बना के रखिए, आई एम श्योर आपको अपने आप ही ये संकेत मिल जाएंगे कि अब किस कहां पर उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
शरद, योर व्यूज ऑन द बुल्स कमिंग बैक स्ट्रांगली ड्यूरिंग द वीक, विल दे कंटिन्यू टू स्टे देयर?
वेल, दैट्स अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, यू नो राजेश, because I'm really personally concerned about the geopolitical tensions, because the bulls will make an attempt to come back, but you know these missiles, when they get fired from, especially if they're intercontinental ballistic missiles, I think they can cause ripple in the market, and so the bulls will make attempt, but I think they might get overshadowed by this news, the geopolitical news coming over from the from international front. I think that will be a matter of concern. So it's going to be a fight between so
that
the news.
Will decide.
Yes, exactly.
Okay. तो श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। शरद जी, मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू शरद, माय प्लेजर। थैंक यू। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, Sensex adds 1,536 points during the week. Nifty rises 1.7%. Wall Street races to a 31-month high. All three U.S. indices post weekly gains. And in the week, Brent and WTI were up by 6%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.